बारह भावना में सातवीं भावना आश्रव। आश्रव का मतलब होता है आत्मा में कर्मों का आना, और कर्मों के आने का द्वार ही आश्रव कहलाता है। और तत्वार सूत्र में इसी बात के लिए लिखा है कि काय वांग मनः कर्मयोगः सा आश्रव। मन वचन काय इनकी क्रिया का नाम ही योग है और वही आश्रव है। यही बात छह ढालाकार ने लिखी है कि जो योगन की चपलाई ताते वह आश्रव है। जो मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश का परिस्पंदन है, चपलता है, उसके द्वारा निरंतर कर्म आते रहते हैं आत्मा में। वे कर्म दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो हमारे मन वचन काय की जो शुभ क्रिया है उसके द्वारा तो शुभ कर्मों का आश्रय होता, और जो मन वचन काय की अशुभ क्रिया है उसके द्वारा अशुभ का आश्रय होता है। हमें दोनों जानना चाहिए। कर्म आश्रय की अपेक्षा से तो हमारे लिए दोनों ही अहितकर हैं, लेकिन शुभ कर्म अशुभ की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। इसलिए जब जीव के निरंतर आश्रय चल रहा है तब उसे इस बात का विचार करना चाहिए कि जब आश्रव निरंतर चल रहा है, मेरे मन वचन काय की कोई भी क्रिया तो मैं करूंगा ही, तब मुझे अशुभ क्रिया से बचना चाहिए और शुभ क्रिया करना चाहिए, ताकि शुभ का आश्रव अधिक हो और अशुभ का आश्रव ना हो। आश्रव का कारण और क्या है? तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओं सर्वस लूटे सुध। मोह नींद की वजह से, जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में चोर क्यों आते हैं? अगर वो सो रहा हो तो घुसाते हैं। इसी तरह हम जो है मन वचन काय की क्रिया के द्वारा सो ही तो जाते हैं। मन वचन काय की जो भी क्रिया है वो हमारे आत्मा से विमुख होने पर ही होती है, वही हमारी निद्रा है, वो मोह से प्रेरित है। तो कहते हैं कि मोह रूपी निद्रा ये हमारे लिए आश्रव का कारण बनती है, और आश्रव तो एक जो है वो प्रवाह है। अब उस प्रवाह को पर कैसे अंकुश लगाएं, ये बात की बात है, पर उस प्रवाह को जान करके क्यों जानना आवश्यक है आश्रव को? तो कहते हैं आश्रव को जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम उस पर रोक लगा सकें, या कि हम उसे कोई दिशा दे सके। अगर नहीं रोक पाते हैं तो कम से कम उसको एक दिशा तो दी जा सकती, शुभ रूप भी उसे किया जा सकता, अशुभ भी किया जा सकता। एक चीज और है कि जिन क्षणों में हम शुभ मन वचन काय नहीं रखते हैं उन क्षणों में मन वचन काय अशुभ ही रहता है, और कोई उपाय ही नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक शुभ मन वचन काय को ही बना के रखें। मन से अच्छा विचार करना, वाणी से श्रेष्ठ वचन बोलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, और शरीर से धार्मिक क्रियाएं करना, यही मन वचन काय का शुभ होना है। तो इस प्रकार ये विचार भी करना कि आश्रव का जो अंतहीन प्रवाह है उस प्रवाह से क्या बचने का कोई उपाय है, या कि ये निरंतर चलता रहेगा। ये इसमें आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तहे तिन्हें निर्वेद। और उसी के साथ हमें ये भी भावना भानी चाहिए कि आश्रव तो हमेशा दुख देने वाला ही है। जो बुद्धिमान है, या मेरी बुद्धिमानी इसमें है कि मैं इससे बचूं, ये आश्रव का बार बार चिंतन करना, क्योंकि आश्रव तो निरंतर हो रहा है।
महाराज जी, ये उसी समय तक हो सकता है जब तक निर्विकल्प समाधि में आदमी ना जाए?
नहीं, प्रति समय आश्रय होता। तेरहवें गुण स्थान में केवल ज्ञान की अवस्था में भी साता वेदनी का आश्रय हो रहा
होता
है। आश्रय तो सिर्फ रुकता है चौदहवें गुण स्थान। तेरहवें गुण स्थान में जब तक योग है, सयोग केवली महाराज हैं, तब तक आश्रय होगा। अब रही बात ये कि एक आश्रय होता है जिसको सांप्रदायिक आश्रय बोलते हैं, जो कषाय सहित होता है, उसमें ड्यूरेशन भी है, पोटेंशियलिटी भी है, लेकिन उसके बाद जो इरिया पदाश्रय होता है उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं होता, सिर्फ कर्म आते हैं और निकल जाते हैं। यह भी एक प्रकार का आश्रय, वो इरिया पदाश्रय, वो बाद को होता है। पर जब तक मुंह है जीव के, तब तक
होता रहेगा,
तब तक आश्रय
मैंने मन की क्रिया होती रहेगी, चाहे हमको नहीं मालूम पड़े, पर वो क्रिया
वो परिस्पंदन तो होता रहेगा आत्मा का। हम अपने बुद्धिपूर्वक करें, इंटेंशनली करें या कि ना करें, कर्म के उदय से निरंतर एक विचार भीतर सतत प्रक्रिया चलती रहती, हमारा प्रयत्न निरंतर चलता रहता, मन का प्रयत्न, वचन का प्रयत्न और शरीर का प्रयत्न, ये कभी खत्म ही नहीं होता जब तक ये तीनों अपने पास हैं। एक इंद्रिय जीव का क्या शरीर का प्रयत्न दिखाई ही नहीं पड़ता, लेकिन होता है वहां पर। इसी तरह से दो इंद्रिय जीव से वचन शुरू हो जाते पर उनका वचन का प्रयत्न दिखाई ही नहीं पड़ता, पर होता है। अपन भी जब चुपचाप बैठे हैं, कोई वचन नहीं बोल रहे हैं, तब भी बोलने का जो विकल्प है, वो विकल्प तो निरंतर वाणी का परिस्पंदन करवाता रहता, उसके माध्यम से। इसलिए इन्होंने परिस्पंदन लिखा है, मन वचन काय की क्रिया नहीं, मन वचन काय की क्रिया से होने वाला जो आत्म प्रदेश परिस्पंदन है वो आश्रव का कार्य। तो यहां आश्रव भावना में कितनी बातें विचारनी है। पहली बात, आश्रव का प्रवाह अंतहीन है, क्या मैं उसे कोई दिशा दे सकता हूं या उसे रोक सकता हूं, एक बात। आश्रव को दिशा देने का अर्थ है उसे शुभ बनाना, उसे अशुभ से बचा लेना। वैसे देखा जाए तो आश्रव चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मेरे अंदर दोनों ही मुझे संसार में रोकने वाले हैं, पर शुभ आश्रव बेहतर है अशुभ की अपेक्षा से। और ये मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से निरंतर होता रहता है, और आश्रव दुख देने वाला, इतनी बात का यहां पर विचार करना चाहिए। इसके बाद अब आता है संवर। अनुप्रेक्षा एक्चुअली भावात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो अपने को ध्यान में रखना। हाँ, एक भावात्मक परिवर्तन होना चाहिए। हम आश्रव का विचार कर रहे हैं तो ठीक है, आश्रव का विचार कर लिया, जितना जितना लिखा था, नहीं, उससे मेरे अंदर एक निरंतर प्रक्रिया होने से जो परिवर्तन घटित होता है कि मैं आश्रव से बचने के लिए तत्पर हो जाता हूँ, तब वो आश्रव भावना श्रेष्ठ मानी जाएगी। और ऐसे आश्रव भावना कर ली, चिंतन कर लिया, लेकिन भावात्मक रूप से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर वो अनुप्रेक्षा नहीं कहलाएगी। इसलिए अनुप्रेक्षा बिल्कुल भावात्मक प्रक्रिया है और हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना। अब जो है संवर, तो संवर का मतलब ये है कि आत्मा में आने वाले पुण्य और पाप के आश्रय को रोक देना, ये संवर कहलाता है। या कि सभी प्रकार के कर्मों का रुक जाना, ये भी आश्रय कहलाता है। जैसे बहते हुए पानी की धारा को हमने एक दिशा दे दी, फिर उसके बाद उसको रोक दिया, इसी तरह की प्रक्रिया इसमें भी है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दिया। जब भी हम कोई शुभ और अशुभ क्रिया करेंगे तब उसके द्वारा आश्रव तो होगा। जिन क्षणों में हम शुभ और अशुभ समस्त क्रियाओं को छोड़ करके और अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, उन क्षणों में हम आश्रव को रोक देते हैं, वही तो संवर की। इसलिए कह रहे हैं कि जिन क्षणों में हम आत्मा का अनुभव करते हैं या आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं, वे क्षण हमारे संवर के हैं। अब इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि विभिन्न भूमिकाओं में कर्मों के आश्रय अलग अलग अवस्था में रुकते हैं। जैसे एक सम्यक दृष्टि है, उसे जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, बे नहीं आती है उसके। ऐसा ही पूर्णतः संवर की स्थिति तो बहुत ऊंची अवस्था में जाके बनती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को क्यों संवर की बात कही जा रही, ताकि वो अपने कुछ कर्मों को तो रोक सके। समस्त कर्मों को रोकने का नाम तो है संवर, लेकिन जितने जितने रुकते चले जाएं, हम भावना तो भाएं कि इन कर्मों को मैं जो आ रहे हैं, कितने कर्मों को मैं रोक सकता हूं, और जितनी देर मैं आत्मा का ध्यान करूंगा उतनी देर तो रोक ही लूंगा, क्योंकि आत्मा के ध्यान करने से ही और शुभ अशुभ सभी कर्म,
नए कर्म बंद नहीं होगा महाराज जी,
नया कर्म बंद नहीं होगा। और संवर के साथ एक चीज और है कि नया कर्म बंद जिन कारणों से हम संवर करते हैं, व्रत समिति गुप्ति इत्यादि के द्वारा जो हम संवर करते हैं, और उधर आश्रव हम कर रहे थे मिथ्या तवृति प्रमाद और कषाय के द्वारा, तो हमने उनको छोड़ दिया और व्रत नियम संयम गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा वगैरह के द्वारा जो हम संवर की शुरुआत करते हैं, वो दो काम एक साथ होता है कि संवर के साथ शुभ कर्मों का बंद भी होता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा भी होती है। अशुभ कर्मों का आना भी रुकता है, अशुभ कर्मों की निद्रा भी होती है और शुभ कर्मों का भी संचय होना शुरू होता है, एक साथ जो है संवर के साथ ये प्रक्रिया। लेकिन हमारा मंतव्य वहाँ यहाँ ये नहीं है, यहाँ हमें चूंकि संवर भावना करनी है इसलिए हम सिर्फ ये विचार कर रहे हैं कि संवर कैसा है। संवर हमारे लिए हितकारी है पहली बात, और कब होता है ये संवर, जब मैं आत्मा की तरफ जितनी देर रहूंगा उतनी देर ही मैं संवर कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा समय आत्मस्थ रहना चाहिए और पाप और पुण्य दोनों क्रियाओं में सबसे पहले तो पाप से बचना चाहिए, फिर उसके बाद जो है पुण्य क्रिया से बचने की आवश्यकता नहीं होती, आत्मस्थ हो जाने पर पुण्य से हम अपने आप बच जाते हैं। तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अब लोके। आश्रव मेरे लिए दुख का कारण था, संवर मेरे लिए सुख का कारण। हो गया बस एक हो गया संवर का अर्थ ये नहीं है कि मैं सर्वथा प्रवृत्ति शून्य होकर के निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं तो संवर हो जाएगा, नहीं। संवर का अर्थ है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच एक समायोजन करना, ठीक ठीक प्रवृत्ति करना और जितनी आवश्यक है उतनी करना, बाकी निवृत्त हो जाना। तो अपना पूरा जो धर्म है वो निवृत्ति मूलक है, संवर निवृत्ति मूलक है। जब हम असमीचीन प्रवृत्ति का निषेध कर देते हैं तो हम उससे निवृत्त हो जाते हैं। हम शुभ प्रवृत्ति, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि मैं नहीं बोलूं, एक तो ये है, और मैं हितमित प्रिय बोलूं, तब भी मेरा नहीं बोलने जैसा ही काम है, उसमें भी निवृत्ति है, क्योंकि मैंने पाप वचन नहीं बोले हैं, हितमित प्रिय बोला है, प्रवृत्ति भी की है तो अशुभ से बच करके की है, इसलिए वह प्रवृत्ति भी जो है संवर का कारण बनती। निवृत्ति तो संवर का कारण है ही, लेकिन प्रवृत्ति भी संवर का कारण बन जाती है। इसलिए संवर का अर्थ इतना ही नहीं है कि सर्वथा प्रवृत्ति शून्य होकर के कोई बैठा है निष्क्रिय, प्रवृत्ति भी है। एक चीज दूसरी बात और ये अपने को ध्यान में रखने की है कि संवर कब होगा, जबकि मैं कर्मों के फल में समता रखूंगा तभी संवर होगा। अर्थात नए कर्म बंधने की प्रक्रिया कब चलती है, जबकि मैं कर्म के उदय में संक्लेश या कि अहंकार कर लेता तब नए कर्मों का आश्रय होता है। मैं संवर करने के लिए फर्ज मेरा यह है कि जो कर्म का उदय आए उसमें अधिक से अधिक मैं समता रखूं, हर्ष और विषाद दोनों ना करूं, तब मुझे संवर होगा। ये मुझे विचार करना चाहिए जबकि मैं संवर अनुप्रेक्षा कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि ऋण तभी चुकता है जब आय से व्यय कम हो। संवर भावना हमें इस बात के लिए इशारा करती है कि हम अपने अंदर कर्मों का संचय अगर अधिक करते रहेंगे और निर्जरा हमारी कम होगी तो संचित द्रव्य अधिक हो जाने से हमारा संसार कभी नष्ट नहीं होगा। संवर हमें इस बात की सलाह देता है कि आने वाले कर्मों का रेश्यो और जाने वाले कर्मों का रेश्यो जो है वो प्रॉपर हो, आने वाले कम आए और जाने का क्रम ज्यादा हो, संवर इस बात के लिए इशारा करता है। इस प्रकार ये संवर अनुप्रेक्षा जो है वो हमारे संचय को कम करने की बात सिखाती है। सामान्य व्यवहार में भी देख लीजिएगा कि जितना कम संचय करेंगे, इसी तरह कर्मों के क्षेत्र में भी कि हम संचय कम करेंगे, तो संवर सीधा सीधा संचय को कम करने की प्रक्रिया है। इस तरह संवर भावना हुई। निर्जरा भावना के बारे में दौलत राम जी लिख रहे हैं कि निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। कर्मों का क्रम क्रम से आत्मा से अलग हो जाना ये निर्जरा कहलाती है। दो प्रक्रियाएं निर्जरा के साथ होती हैं, एक तो कर्म अपना समय पूरा होने पर फल दे करके आपो आप नष्ट हो जाते हैं, वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। तो कह रहे हैं कि निज काल पाए विधि झरना, विधि मतलब कर्म, अपना समय पाकर के अपना फल दे करके कर्मों का खिर जाना, इससे हमारा काम पूरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम उन कर्मों को जो हमारे साथ बंधे हुए हैं निर्जरित करना चाहें तपस्या के माध्यम से समय से पहले, तो हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे, हमारा डीके फास्ट होगा। तो वही बात इसमें, हमें दोनों चीजें जानना चाहिए निर्जरा के बारे में, कि कर्म अपना फल दे करके स्वयं नष्ट हो जाता है, वह भी एक निर्जरा है, वो तो प्राणी मात्र के लिए निरंतर चलती रहती है। मुझे यहाँ पर जिस निर्जरा की भावना भानी है, वो तब से होने वाली निर्जरा है, जिससे कि मेरा संचित द्रव्य समय से पहले मैं उसे नष्ट कर सकूं। ये आवश्यक है। जिन माध्यमों से संवर होता उनसे निर्जरा तो होती ही है, लेकिन तप के द्वारा। तो जो इंद्रिय विजय या कि कामनाओं पर विजय है, जिसको तपस्या कहते हैं, उस तपस्या के द्वारा ही कर्म निर्जरा होती है। इसलिए इंद्रिय और मन का सतर्क होकर के सदुपयोग करने से मुझे लाभ मिलेगा, ये मेरे भीतर एक धारणा बननी चाहिए। मैं इंद्रिय और मन का ठीक ठीक उपयोग नहीं करूँगा तो मेरे कर्मों का संचय ज़्यादा होगा और डीके कम होगा। अगर मैं इंद्रिय और मन का नियंत्रित उपयोग करता हूँ तो संचय भी कम होगा और कर्मों की निर्जरा अधिक होगी, यानी संवर और निर्जरा दोनों होती हैं तप के द्वारा। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंद्रिय और मन ये हमारे साधन है निर्जरा के लिए। अक्सर व्यक्ति इंद्रिय और मन के साथ ज्यादती करता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं या तो उन्हें निस्तेज बना देता है। आंख फोड़ लेने से थोड़ी निर्जरा होती है, आंख का ठीक ठीक उपयोग करना। इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि क्षमता बुरी नहीं होती, क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाना ही उसका बुरा होना कहलाएगा। जैसे मरियल घोड़ा है, वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन जरा बलवान घोड़ा हो तो उसी से हम काम ले सकते हैं। कैसे इसी तरह इंद्रियां हैं, मरियल हो जाएंगी तो उनसे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। इंद्रियां सतेज रहे, मन भी हमारा बहुत सतेज रहे, लेकिन उसका सदुपयोग करें। वो जो क्षमता हमें प्राप्त हुई है, तो इंद्रिय और मन की क्षमता का सदुपयोग करना ये निर्जरा के लिए आवश्यक है। सामान्यतः हम लोग यही विचार करते हैं कि इंद्रिय और मन को मार देना, मार देने का मतलब क्या, उन्हें नष्ट कर देना? नहीं, उनकी अनियंत्रित प्रवृत्ति को नष्ट कर देना, उन्हें एक नियंत्रण देना, उन्हें एक अनुशासन देना। इस तरह ये मुख तो तप ही निर्जरा के लिए कारण है, और तप तो समता भी तप है, इंद्रिय विजय भी तप है, या कि मन का नियंत्रण भी तप है, इच्छा का निरोध जिसको मन कहते हैं वही तप है, इच्छा निरोधा तपा। इस तरह तप के माध्यम से हम निर्जरा आसानी से कर सकते हैं। और निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सामान्य रूप से निरंतर होने वाली और एक तप के द्वारा होने वाली। ये विचार मुझे करना चाहिए कि निरंतर होने वाली निर्जरा से मेरा काम नहीं बनेगा, तप के द्वारा होने वाली निर्जरा से मैं क्या प्राप्त करूंगा? तो संवर और निर्जरा दोनों ही मुझे मोक्ष प्राप्ति के साधन है। सोई शिव सुख दर्शावे, अर्थात निरंतर संवर पूर्वक निर्जरा करने से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। संवर पूर्वक निर्जरा तपस्या से ही होती है। सामान्य रूप से जो निर्जरा होती है उसके साथ तो बंद भी हो रहा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके अतिरिक्त निर्जरा भी हो रही है और संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है। यहाँ पर जो निर्जरा भावना है वो संवर पूर्वक निर्जरा की भावना है, ये अपने को ध्यान में रखना। इस तरह ये निर्जरा भावना हुई। लोक भावना में कहते हैं कि किन्हु न करो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। हमें लोक के बारे में भी विचार करना चाहिए। लोक को सामान्य भाषा में संसार भी कहते हैं। वह जो संसार है वो तो पंच परावर्तन रूप है, या कि छह द्रव्यों से बना हुआ है, लेकिन अपने परिणामों के द्वारा जो एक संसार में अपने भीतर बना लेता हूं वो इस संसार से बिल्कुल अलग है। मुझे उस संसार को तोड़ने का ध्यान रखना चाहिए। उस संसार का जो कि मैं अपने भीतर बनाता हूं, मैं कर्ता और स्वामी और भोक्ता हूं, ये ठीक है, लेकिन ये जो बाहर में छह द्रव्यों से बना हुआ संसार है या पंच परावर्तन रूप संसार है, उसे ना मैं कर्ता हूं, ना मैं उसका स्वामी हूं, ना मैं उसे मिटा सकता। किन्हु न करे न धरे को, ना कोई उससे करता है, ना कोई उसकी रक्षा करता अर्थात उसे धारण करता है, और ना कोई हरे को अर्थात ना कोई उसे नष्ट कर सकता है। ये तो क्षय द्रव्यों से बिना के बना हुआ उत्पाद वह द्रव्य, ये इसका स्वभाव है। इस तरह मैं लोक के बारे में विचार करता हूँ तो मेरे भीतर समता आती है, और अगर मैं लोक के बारे में ये विचार करता हूँ कि मैं ये बना लेता हूँ, मैं ये मिटा सकता हूँ, मैं ही, मेरे द्वारा ही ये संसार चल रहा है, ऐसा विचार जीव करता है, इसीलिए वो यहाँ पर विषमता को प्राप्त करता, समता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे कि सामान्य रूप से हम ये सोचें कि अरे हमारे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी, अरे हमारे बिना ये काम नहीं चलेगा, तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि मेरे नहीं होने पर भी ये संसार ऐसा ही चलता था, मैं इधर से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाऊंगा तब भी ये ऐसा ही चलेगा। ये विचार जो है लोकानुप्रेक्षा में आवश्यक है कि मैं ये जो अपना कर्ता और स्वामीपना और भोक्तापना मान करके यहाँ संसार में जीता हूँ वो मेरी मान्यता ठीक नहीं है। संसार की वास्तविकता ये है कि संसार अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है, छह द्रव्यों के द्वारा, मेरे चलाए नहीं चल रहा, ना मेरे रोकने से रुकने वाला है, ना मैं उसे मैनेज कर रहा हूं। इस तरह ये लोक भावना, और भी है लोक के संस्थान का विचार करना कि 14 राज उतंगन लोक पुरुष संठान तामे जीवनादिते भ्रमते विज्ञान। मैं इस संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ, मैं अपनी अज्ञानता से भ्रमण कर रहा हूँ। सभी जीव यहाँ अपनी अज्ञानता से भ्रमण करते हैं, और ये 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू मोटा है, और ऊर्धलोक, मध्यलोक और अधोलोक ऐसे 3 विभागों में बटा हुआ है, और अधोलोक में नार की जीव रहते हैं, मध्यलोक में त्रियंच और मनुष्य रहते हैं, ऊर्धलोक में स्वर्ग है और वहाँ देवलोक रहते हैं। इस तरह से ऐसा भी लोक का विचार करना वो भी किया जा सकता, वो सब भी जो है लोकानुप्रेक्षा कहलाएगी। पर मुख्य विचार ये है उसमें कि इस लोक में अपनी अज्ञानता की वजह से जीव भ्रमण करता है। संसार अनुप्रेक्षा और लोकानुप्रेक्षा में फर्क कितना, ये हमें ध्यान देना चाहिए। संसार अनुप्रेक्षा में अपन ने क्या विचार किया था कि चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच सहे हैं, सो लोक चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा या में सुखना ही लगा रहा। मैं वहां पर एक अपना संसार निर्मित करता हूं और उसमें सुख पाने की कोशिश करता हूं, जबकि यहां पर चारों गतियां जिनको की आवागमन का नाम वहां संसार है। इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि ये लोक और संसार में इतना ही फर्क है कि लोक तो 6 द्रव्यों से मिलके बना, और वो जो संसार है वो मेरे अपने परिणामों से निर्मित हुआ है। तो मुझे जो है संसार अनुप्रेक्षा भाते समय ये कि मैं अपने परिणामों से जो एक संसार बना लेता हूँ वो संसार मुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता, उसमें कोई सारभूत चीज नहीं है। और ये जो लोक है, इस लोक में तो अगर मैं अपनी अज्ञानता छोड़ दूं तो ये लोक मुझे समता पूर्वक, अगर मैं इसमें रहूं, कर्ता भोक्ता ना बनूं, तो ये लोक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, मेरा संसार मुझे नष्ट करना चाहिए, ये लोक को मैं ना नष्ट कर सकता हूं ना मैं बना सकता हूं। इस तरह का लोक अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा में थोड़ा सा अपने को फर्क करना चाहिए। और एक चीज और है जो इसमें विशेष अपने को जानने की है कि पुरुषाकार है ये लोक, तो पूरे पुरुषाकार लोक के प्रति अगर हम एक आत्मीय भाव रखें, अब पूरा लोक हमारे अंदर है, इस तरह क्यों ना विचार करें, क्योंकि मेरे ही आकार का 3 लोक है। जब सारा संसार मेरे ही भीतर है, सारा लोक मेरे भीतर है, तो मैं उस पूरे लोक के साथ आत्मीयता रखूं, तब ये लोक भावना कहलाएगी। उस प्राणी मात्र के प्रति जो मैत्री का भाव है वो लोक भाव। एक अप्रोच ये भी, लोक भावना का मतलब है कि सब जीव इसी में समाये, मेरे भीतर ही है, इसलिए सब मेरे लिए आत्मीय है। समस्त जीवों में ईशत्व का या ईश्वरत्व का दर्शन कर पाना, यह भी लोक भावना। इतनी उदार वृत्ति इस लोक भावना में, लोक भावना एक तरह से अर्जुन के द्वारा को दिखाया गया कृष्ण का विराट दर्शन ही है। वो विराट दर्शन एक 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 व्यक्ति के भीतर पूरा पूरी सृष्टि, तो फिर कितनी सावधानी रखना पड़ेगी, मेरे भीतर ही सारी सृष्टि है, तो मुझे सबको अपने भीतर समा करके चलना है, मेरी अपनी उदारता, मेरी अपनी आत्मीयता, और सबके भीतर जो ईश्वर बनने का गुण है वो लोक भावना। ये एक अलग प्रकार का सोच है लोक भावना के लिए। तो कितनी बातें हो गई कि लोक में कोई कर्ता भोक्ता और उसका स्वामी नहीं है, ये क्षद्रव्यों से मिलकर बना है। एक विचार ये करूं, यहाँ पर कोई भी जीव अगर भटकता है तो अपने समता परिणाम न रखने की वजह से भटकता है। दूसरी, जब मैं लोक का विचार करूं तो लोक ऊर्ध्व मध्य अधोलोक संस्थान आकार प्रकार की अपेक्षा लोक का विचार कर सकते हैं। और तीसरा विचार ये है कि लोक भावना का अर्थ है कि मैं पुरुषाकार हूँ और मेरे भीतर ही सारा लोक है, सारी समष्टि है, मुझे उसके साथ आत्मीयता रखनी है और सभी जीवों के भीतर जो ईश्वरत्व है इतना उदार होकर के उससे मुझे स्वीकार करना। इस तरह हम तीन प्रकार से लोक भावना का विचार कर सकते हैं। ये अच्छा विचार है।